रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानून व्यवसायियों ने आज भी दिया धरना। पेशी तय होने के बावजूद नहीं हो पाई मुकदमों की सुनवाई। बीपी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में दिख रही समस्या का समाधान करने के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर समस्या का समाधान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री विनोद खतिवड़ा का कथन। 12 से 17 साल तक के दीर्घ रोगी बच्चों को परसों से दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। और पूर्वी अफगानिस्तान में एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 2 की मौत, 17 घायल। अब समाचार विस्तार से। न्यायाधीशों के अघोषित इजलास बहिष्कार और नेपाल बार एसोसिएशन के आंदोलन के कारण सुप्रीम कोर्ट में आज भी कोई भी इजलास नहीं बुलाया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए निर्धारित 8 इजलासों में 223 मामलों की पेशी तय की थी। हालांकि प्रधान न्यायाधीश चुरेंद्र शमशेर जबरा ने खुद को इजलास से अलग रखा था। इस बीच प्रधान न्यायाधीश जबरा के इस्तीफे की मांग के साथ निरंतर विरोध में रहे नेपाल बार एसोसिएशन ने आज प्रधान न्यायाधीश जबरा के अदालत प्रवेश पर रोक लगाई थी। बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट के मूल गेट पर धरना देते हुए प्रवेश न करने देने के बाद प्रधान न्यायाधीश जबरा ने दूसरे गेट से सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश किया था। बता दें कि कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में कानून व्यवसायियों के ऊपर पुलिस के हस्तक्षेप करने के विरोध में कल नेपाल बार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण सहित किसी भी मुकदमे पर बहस न करने की घोषणा की थी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि न्यायालय जैसी स्वतंत्र और गरिमामय संस्था को विवाद में नहीं लाया जाना चाहिए। प्रेस सेंटर भोजपुर द्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विवाद को भीतर ही सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए और इस विषय में सत्ता गठबंधन जल्द ही अपनी धारणा साझा करेगा। नेकपा एकीकृत समाजवादी की स्थायी कमेटी की बैठक ने राजनीतिक पार्टियों के साथ उसकी शक्ति, क्षमता व जनाधार, राजनीतिक दृष्टिकोण और महत्व के आधार पर वार्ता करने का निर्णय किया। बैठक ने विभिन्न दलों और शक्तियों के साथ हुई वार्ताओं के बारे में महासचिव डॉ बेदुराम भूषाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में प्रस्ताव केंद्रीय कमेटी की बैठक में ले जाने का भी निर्णय किया। ये बात प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ा द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेखित है। बैठक में अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा, नेकपा एमाले हमारे विरुद्ध षड्यंत्र मूलक तरीके से झूठ और भ्रम फैला रही है, इसलिए पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं को विसर्जनवाद और सर्वसत्तावाद के विरुद्ध और अधिक सशक्त होकर लगना होगा। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने कहा कि बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रवाह किए गए ऋण का कोई खास प्रतिफल नहीं दिख रहा है, इसलिए सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले क्षेत्र में निवेश करना होगा। आज अर्थ मंत्रालय में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर सहित 27 वाणिज्य बैंकों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श में अर्थमंत्री शर्मा ने कहा कि ऋण प्रवाह के मुताबिक आर्थिक वृद्धि नहीं हो पाई है, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। मौके पर नेपाल बैंकर्स संघ के अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि तरलता का अभाव होने के कारण तत्काल के लिए बड़े आकार के ऋण को रोककर लघु ऋण प्रवाह पर ध्यान देने की हालिया मजबूरी है। नेकपा एमाले ने चितवन में आयोजित होने वाले 10वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आधिकारिक लोगो और मूल नारा साझा किया है। आज राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एमाले ने मार्गशीर्ष 10 कते से आयोजित करने जा रहे महाधिवेशन का आधिकारिक लोगो और मूल नारा साझा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल ने कहा कि महाधिवेशन आगामी कार्यकाल के लिए पार्टी का नया नेतृत्व चुनेगा और इससे राष्ट्रीय राजनीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। धरान स्थित बीपी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में दिख रही समस्याओं का समाधान करने के लिए गठित समिति ने आज प्रधानमंत्री तथा प्रतिष्ठान के कुलपति शेर बहादुर देववा को प्रतिवेदन सौंपा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री एवं प्रतिष्ठान के सह कुलपति विरोध खतिवड़ा की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रतिवेदन पेश किया। प्रतिष्ठान में पाई गई अनियमितता और पदाधिकारी को हटाने के विषय में जांच के लिए इसी कार्तिक 5 कत्ते स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉ रोशन पोखरेल और धरान उपमहानगरपालिका के प्रमुख को बतौर सदस्य रखकर समिति का गठन किया गया था। बता दें कि इस विषय में प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए समिति को 21 दिनों का समय दिया गया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G
चल।
यो कल गर्दा नो पोर जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार.
अब बाकी समाचार. सरकार ने 12 साल से लेकर 17 साल तक के दीर्घ रोगी बच्चों को परसों रविवार से कोरोना की फाइजर वैक्सीन लगाने की तैयारी की है. स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा ने आज टेको में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी कार्तिक 28 गते से मार्गशीर्ष 4 गते तक वैक्सीन लगाने की जानकारी साझा की. ये जानकारी स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा के प्रमुख सागर तहाल ने दी. उन्होंने कहा कि देशभर के विभिन्न 24 अस्पतालों में सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी. देशभर में आज कोरोना के 397 नए मामले सामने आए हैं. वहीं पिछले 24 घंटों में 389 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि आज 3 संक्रमितों की मौत हो गई. ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी. मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक बहरहाल संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर 97.7% है. नेपाल में 7,498 कोरोना के सक्रिय संक्रमितों का इलाज चल रहा है. अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने कहा कि पोखरा से काठमांडू की यात्रा को छोटा कर 2 घंटों की बनाने की योजना बनाई गई है. पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आज पोखरा में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री शर्मा ने कहा कि पोखरा से काठमांडू के सड़क मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाकर यात्रा को छोटा बनाने की योजना सरकार की है और इस विषय में भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के साथ विचार विमर्श चल रहा है. नागढुंगा मुगलिंग सड़क सुधार और विस्तार की प्रक्रिया शुरू हुई है. नागढुंगा मुगलिन सड़क योजना के प्रमुख किरण कार्के से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 95 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क को 3 पैकेजों में बनाया जाएगा. रेडियो नेपाल और नेपाल वातावरण विभाग के बीच वातावरण संबंधी सचेतना अभिवृद्धि करने के लिए जनचेतना मूलक संदेश व सूचना प्रसारण करने का समझौता हुआ है. समझौता पत्र पर आज रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर केसी और वातावरण विभाग के महानिदेशक मुकुंद प्रसाद निरौला ने हस्ताक्षर किए. संयुक्त विद्यार्थी संगठन ने पेट्रोलियम की कीमत में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग करते हुए नेपाल ऑयल निगम का घेराव किया. पेट्रोलियम की कीमत में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग करते हुए आज नेपाल ऑयल निगम के केंद्रीय कार्यालय का संयुक्त विद्यार्थी संगठन ने घेराव किया था. अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. पूर्वी अफगानिस्तान में आज भीषण विस्फोट हुआ. यह धमाका नंगरहार प्रांत के स्पिन घर जिले की एक मस्जिद में दोपहर की नमाज के दौरान हुआ. अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के अनुसार मस्जिद में हुए इस धमाके में 2 की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए. मस्जिद में हुए धमाके की अभी किसी आतंकी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जिस मस्जिद में धमाका हुआ है उस दौरान उसमें सुन्नी मुसलमान थे. बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से मस्जिदों पर हमले तेज हो गए हैं. पिछले दिनों कई शिया मस्जिदों पर हमले किए गए हैं. अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में अफगानिस्तान के कुंदूज शहर स्थित मस्जिद के भीतर हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ने ली थी. इस हमले में 80 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे. जब विस्फोट हुआ तब इलाके में रहने वाले शिया मुसलमान बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए हुए थे. गौरतलब है कि तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में हालात और खराब हो गए हैं. हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि अफगानिस्तान में मानवीय स्थितियां बहुत ही खराब हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल मदद के लिए आगे आना चाहिए. अब मौसम. अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी व्यवसायियों ने आज भी दिया धरना. पेशी तय होने के बावजूद नहीं हो पाई मुकदमों की सुनवाई. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में दिख रही समस्या का समाधान करने के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर समस्या का समाधान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री विनोद खतिवड़ा का कथन। 12 से 17 साल तक के दीर्घ रोगी बच्चों को परसों से दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। और पूर्वी अफगानिस्तान में एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत, 17 घायल। इसके साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार।